ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. कल चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोला और आज रूप गोस्वामी के बारे में. रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुख्य पार्षद थे. महाप्रभु के हजार हजारों पार्षद थे, लेकिन उनमें रूप गोस्वामी मुख्य थे. रूपानुग सभी गौड़िया वैष्णव रूपानुग कहलाते हैं. चैतन्य अनुग नहीं है. अनुग का मतलब अनुगामी सदस्य. तो हम रूप गोस्वामी संप्रदाय, रूप गोस्वामी का संप्रदाय में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा वो सब तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, वो सब सिखा दिया है. रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत ही पुस्तक लिखा है. चैतन्य महाप्रभु स्वयं खाली 8 श्लोक लिखा दिया थे शिक्षाष्टक, जिसमें पूरा वैष्णव तत्व का सार मिलते हैं. वो सा विस्तार रूप में भक्ति रसामृत सिंधु और सभी पुस्तक में मिलते हैं. रूप गोस्वामी बहुत बहुत पुस्तक लिखा है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से. भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, दान खेली कमोदी, हंसदूता इत्यादि. लेकिन वो सभी पुस्तक में ये भक्ति रसामृत सिंधु सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषकर कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्तों के लिए. चैतन्य महाप्रभु 10 दिन प्रयाग दशाश्वमेध घाट में एक शांत जगह में वो सब भक्ति तत्व रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया. और वो सब रूप गोस्वामी इस भक्ति रसामृत सिंधु में संकलन किया. नाना शास्त्र विचार नायक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो. सद गोस्वामी के बारे में मतलब रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दासु रघुनाथ इच्छे गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु मुख्य अनुगामी थे, ये सबों के बारे में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि नाना शास्त्र विचार नायक निपुण. वो सभी संत जो चैतन्य महाप्रभु अनुगामी थे बहुत निपुण थे वो सभी शास्त्र का विवेचन करने में, बहुत शास्त्र पढ़ के उसका सार संकलन किया. विशेषकर इस भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत बहुत श्लोक है, श्रीमद् भागवत से, पद्म पुराण से, वेद से, भविष्य पुराण से. तो इस प्रकार वो सभी शास्त्र का सार मिलके इस भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति, शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति स्थापित हुआ है. तो पहले रूप गोस्वामी एक मंत्री थे. उस समय बंगाल में वो मुसलमान का राज्य था. नवाब हुसैन शाह राजा थे और रूप गोस्वामी एक उच्च कर्नाटक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया थे. लेकिन इतना बुद्धिमान थे कि वो नवाब हुसैन शाह उनको प्रधानमंत्री पद दिया थे और उनको धबीर खास ऐसा नाम उनको दिया. लेकिन बाद में रूप गोस्वामी और उनका भाई सनातन गोस्वामी जिनका नाम सकीर मलिक था, तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन गए और वहाँ पर भजन किए और मंदिर स्थापन किया और इस प्रकार शास्त्र विवेचना करके बहुत बहुत भक्तिमय पुस्तक लिखा दिए थे. त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रीनिंग सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोपीन कांताश्रितो. रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत बड़े व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष, Nawab Hussain Shah ka saar kaam hai. Lekin sab kuch chhod ke Vrindavan mein rehte the. Aur kali hath mein ek kamandalu tha. Aur kuch nahi. Kopin aur kanta. Kanta ka matlab jaise ek kamba. Aur kuch nahi tha unke paas. To is prakar mahan vairagya prakash karke Vrindavan mein nivas karte the. Aur sadaiva hari bhajan ki lahiri mein doob jate the. To Rupa Goswami is bhakti rasamrit sindhu ko sabhi gauriya vaishnavon ke liye likha diya the. Aur usme bhakti kya hai aur kaise karna hai uska pura vivaran karna. Bhakti rasamrita sindhu uska kya matlab hai. Bhakti, bhakti ka matlab Shri Krishna ke liye bhakti. Kyunki Shri Krishna sabhi jivon ke liye aradhaniya hai. Ekale Ishvara Krishna aur sab bhritya. Shri Krishna ek hai, Bhagavan. Aur jiv asankhya hai. Sab jiv Bhagavan Shri Krishna ke sevak hai. Shri Krishna Prabhu hai. To bhakti ka matlab Shri Krishna ki seva karna. Wo bahut saral baat hai. So, Shri Krishna seva karna kis prakar? Bhakti se. Matlab prem se. Aur wo prem se kya milte hai? Ras milte hai. Kis liye Bhagavan ki seva karna? Jaise Bhagavan santusht hoenge. Aur wo seva karna se hum ras milte hai. Paraspar prem se. To wo ras kis prakar hai? Amrit. Amrit ka saman hai. Amrit ka kya matlab hai? Mrit. Uska matlab mrityu aur amrit jiske dwara mrityu nahi hoti hai. Jaise ki Gita mein Bhagavan Sri Krishna kehte hai janma karma cha me devyam evangyo veti tatvatah tyaktva deham punar janma naiti mameti surjuna. Jo tatvatah achhi tarah se samajhte hai ki mera janma Sri Krishna ka janma aur karma sab kuch jo Bhagavan karte hai वो सब दिव्य है, वो साधारण नहीं है. तो जो समझते हैं कि मैं भगवान हूँ और इस प्रकार मुझको भक्ति करते हैं, तो वैसे व्यक्ति त्यक्त्वा देहं, मतलब शरीर चौके, मेरे पास आते हैं, उसका पुनः मरण नहीं होते. तो भक्ति से अमृत मिलते हैं और अमृत का दूसरा मतलब जो बहुत मीठा है, रसमय. तो भक्ति रसामृत सिंधु एक विशाल सागर है ये भक्ति रस का. तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में वो सब उपदेश मिलते हैं. तो कैसे भक्ति करना है, किस लिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति का क्या क्या लक्षण है, भक्ति की महत्व क्या है, भक्ति किस किस प्रकार है, दूसरे दूसरे स्तर है, शुद्ध भक्ति, मिश्र भक्ति और दूसरा दूसरा प्रकार भक्त है, काम मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, शुद्ध भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त. उसका पूरा विवरण इस भक्ति रसामृत सिंधु में है और सब शास्त्र के द्वारा स्थापित है. इसमें कुछ कल्पना नहीं है. ऐसा है आजकल देखते हैं कि ऐसा बहुत काल्पनिक बात धर्म समाज में चलते हैं. लेकिन वास्तव में जो धर्म के शास्त्र से स्थापन करना चाहिए. तो भक्ति रसामृत सिंधु में खाली शास्त्र का प्रमाण है और कुछ नहीं. तो भक्ति रसामृत सिंधु और रस किस प्रकार है, रस क्या है, रस का क्या मतलब है. सब रस चाहते. गुजरात में खेरी नो रस वो बहुत प्रसिद्ध है. आम का रस क्यों, उसका स्वाद है, मीठा है, उत्तम स्वाद है. खेरी नू रस, आम रस. भक्ति रस किस प्रकार है, बहुत मीठा है और उसमें स्वाद है. तो रस के लिए सब लोग काम करते हैं. किस लिए, इस बॉम्बे में देखते हैं बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं. लोकल ट्रेन में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है. तो किस लिए लोग काम करते हैं, किस लिए? जैसे कि पैसे मिलेगा और पैसे से क्या होते हैं, तो परिवार का पालन करते हैं लोग, तो किस लिए ऐसे करते हैं? किस लिए शादी करना है और बच्चे लेते हैं? किस लिए इतना काम करते? क्योंकि उसमें कुछ रास मिलते, तो इतना काम करने से पैसे मिलते हैं, फिर पत्नी को देना है, बच्चे को देना है, क्योंकि वो संबंध में पति पत्नी, पुत्र पिता, उसमें कुछ रास मिलते हैं, वो प्रेम है। वास्तविक प्रेम नहीं मिलते, वो जड़ रास है, जड़ भौतिक रास है, क्योंकि वो रास जो हम इस भौतिक जगत में मिलते हैं वो अमृत के समान नहीं है, क्योंकि इस भौतिक संसार में मृत्यु होते हैं, तो सब संबंध जो है उसका आदि है और अंत है, शुरू है और अंत होते हैं। तो इसलिए वो रसामृत जो भक्ति से मिलते, भक्ति रसामृत, वो जड़ संसार में मिलना संभव नहीं है। सब मर जाते हैं, तो मरण के बाद आपकी पत्नी, उसको छोड़ देना पड़ेगा, और अगर आपकी पत्नी आपके सामने मर जाएगी तो वो संबंध खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा भगवान है, वो संबंध उसका कटना कभी नहीं होते, उसका अंत कभी नहीं होते, वो संबंध शाश्वत है। तो आपकी पत्नी और आप, वो आप दोनों आत्मा है, लेकिन वो संबंध जो है वो आत्मा से आत्मा संबंध नहीं होते, वो शरीर के बारे में स्थापित होते हैं। तो शरीर का शुरू होते, शरीर का अंत होते, और आपका मरण के बाद एक आप एक जगह जाएंगे और आपकी पत्नी दूसरा जगह जाएंगे, तो वो संबंध वो कट हो जाएगा। लेकिन ये संबंध श्री कृष्ण और जीव, वो संबंध नित्य शाश्वत है, इसलिए उसका अंत कभी नहीं होते। और दूसरी बात है कि वो संबंध जो है, वो प्रेम जो है इस भौतिक जगत में, वो बहुत ही तुच्छ होते, बहुत कम होते। श्री कृष्ण रसामृत सिंधु है, उन श्री कृष्ण की प्रेम करना वो असीम है। जैसे श्री कृष्ण असीम है, भगवान का प्रेम वो भी असीम होते हैं। लेकिन इस जड़ संसार में वो सब प्रेम जो है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वो सब कलुष से मिश्रित होते हैं। इसलिए इस जड़ रस से हम पूरा प्रेम कभी नहीं मिल सकते। सब वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए, प्रयास करने के लिए सब ऊब जाते, निराश जाते, हताशा ऐसा होते। तो इसलिए वास्तविक रस और वास्तविक प्रेम खाली कृष्ण सेवा में मिलते। आत्मेंद्रिय प्रीति वंच तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। वो फर्क है। जो प्रेम का नाम इस जड़ संसार में चलते, वास्तव में वो खाली भौतिक कामना है, लेकिन शुद्ध प्रेम खाली कृष्ण सेवा में मिलते। कृष्ण सेवा में क्या भावना है? कि मैं श्री कृष्ण की सेवा कर चाहता हूँ और उसमें कुछ भी नहीं चाहता हूँ, खाली श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर सब प्रेम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? कामना, भौतिक कामना। तो सब किसको प्रेम करना है? तो अगर कोई नायिका है, युवती, सुंदरी, तो ऐसा महिला को प्रेम करना है, लेकिन वो प्रेम है क्या है? तो कामना है, भौतिक काम। लेकिन वो काम से क्या होते हैं? काम से क्रोध होते हैं, काम से पूरा विनाश होते हैं। वो इंद्रिय सुख से कोई सुख नहीं होते। देखो पूरा जगत की स्थिति, सब इंद्रिय सुख चाहते, लेकिन क्या प्राप्त होते? इंद्रिय तथाकथित इंद्रिय सुख से क्या मिलते हैं? जन्म मृत्यु चुरा व्याधि वो सुख तो कभी सुख नहीं होते। और अगर आप सोचते हैं यही सुख है, लेकिन वो सुख दुख के साथ हमेशा मिश्रित रहते। देखो इतने बड़े लोग है जिसके पास काफी पैसा है, बड़ा बंगलो है, मर्सिडीज बेंज का है। अभी मर्सिडीज इंडिया में बनाते, प्रगति होती है, मर्सिडीज यहाँ पर मिलते। लेकिन ऐसा है कि जो मर्सिडीज चलाते या मालाबार हिल्स में रहते सुखी है नहीं। तो ऐसे लोग धनी लोग भी ऐसा बहुत चिंतित रहते। तो अगर चिंता हो तो कैसे सुख होते? सुख का मूल क्या है? शांति। तो अगर चिंता हो तो कैसे शांति हो, और अगर शांति हो तो कैसे सुख हो? तो संभव नहीं है। तो ये प्रेम जो इस जगत में प्रेम का नाम चलते है वो खाली इंद्रिय सुख का कामना है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो पहला शिक्षा है कि इंद्रिय सुख के द्वारा कभी भी सुख नहीं मिलना है। वो खाली सुख का नाम में चलते है, लेकिन वो सुख नहीं है। इस जगत का क्या लक्षण है? अनित्यम असुखम दुखम दुखालयम अशाश्वतम। दो प्रधान लक्षण है इस जगत के। दुखालयम, ये दुख का स्थान है, सुख का स्थान नहीं है। और अशाश्वत, अगर हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा मर्सिडीज बेंज का है, बंगलो है, काफी पैसा है, सुंदरी पत्नी है, कुत्ता है, सब कुछ है, लेकिन सब अशाश्वत है। आपका कुत्ता है तो शायद आप भी कुत्ते होंगे। तो ये काल चक्र का प्रभाव है। वैसे होते हैं, कोई निश्चय नहीं है कि आज आप राजा है तो कल आप कुत्ता हो सकते। यही भौतिक जगत की स्थिति है। तो सब अशाश्वत है। आप इतना प्रयास से बड़ा बिजनेस बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, लेकिन आप मर जाएंगे और आपके साथ आप एक पैसा भी नहीं ले जा सकते, संभव नहीं है। तो यमराज सबके पास आते हैं, सब कुछ लेते हैं। आप खाली हाथ में आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो देखो इस जगत का क्या लक्षण है। तो इसलिए तो समझना चाहिए, तो इस जगत में क्या है? कुछ नहीं है। हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं इंद्रिय सुख सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, खाली मनुष्य नहीं है। तो सब पशुओं भी पक्षियों भी सुख इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं। और जो प्रेम का नाम इस जगत में चलते है वो खाली एक प्रकार इंद्रिय सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है कि आप अगर सुंदरी स्त्री से शादी करेंगे तो आप बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। खाली चिंता और बढ़ेगी, ऐसा होता है। देखो आप, देखो क्या स्थिति है इस जगत में। तो कहाँ सुख मिलते है? सब सुख चाहते है। इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे स्वभाव है सुखमय, लेकिन सुख कहाँ है? इस जगत में नहीं मिलते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जगत में क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका मतलब है जन्म, सब जन्म लेते, उसमें भी बहुत तकलीफ होते और सब मार जाते हैं। जन्मस्य ही ध्रुव मृत्यु, और गीता में भगवान कहते, और आप खुद के अंक में देख सकते कि सब जो जन्म लेते हैं कुछ दिन के बाद मार जाते। ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जो मार गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो ऐसा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ऐसा काल चक्र ऐसे चलते, सब सदैव काल चक्र में भ्रमण करते, जन्म मृत्यु, और बीच में क्या होते हैं? बीमारी होते हैं और बलपान होते। तो उसमें क्या सुख है? स सब संस्कार करते हैं। इस जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु तक खाली संस्कार होते हैं। और उसमें अगर हम मर्सिडीज बेंज कार मिलते या मारुति कार मिलते या टू व्हीलर मिलते, हम सोचते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं सुखी हूँ। तो क्या है इसमें? कुछ नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता में है उसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर सुख नहीं है तो कैसे सुख मिलेंगे, इसमें ये भक्ति रसामृत सिंधु में आप सुख मिलेंगे। कृष्ण प्रेम रस वही वास्तविक रस है। वो सब रस जो है इस जड़ जगत कृत्रिम है, बहुत ही तुच्छ है, उससे कुछ फायदा नहीं मिलते है। तो भक्ति रस वो भक्ति रसामृत सिंधु में उसमें डूब जाना चाहिए, भक्ति रस में। तो भक्ति रस किस प्रकार है? हमारे कोई अनुभूति नहीं है, खाली मैं बोलता हूँ स्वामी जी भक्ति रस के बारे में बोलते हैं, लेकिन उस वो क्या है? तो भक्ति रसामृत सिंधु इस पुस्तक से आप ज्ञान मिल सकते हैं। और अपना जीवन में अगर आप भक्ति करेंगे, आप भक्ति वो क्या है आप अपना जीवन में अनुभूति कर सकेंगे। तो भक्ति किस प्रकार है? तो इस जीवन में हम कर सकेंगे और वहाँ पर भी आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में भी आप भक्ति रस कर सकेंगे।